इल्म दी सीखना है हम हद से लहद तक, देखो गफलत से बचना जिंदगी की सरहद तक।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دھولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک تمہارے نام بما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ تو ہمیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا پروگرام فیضان شریعت، ٹاپک ہمارا چل رہا تھا بزرگوں کے حوالے سے کہ بزرگ کسے کہتے ہیں اور بزرگ کی ڈیفینیشن کس اعتبار سے ہے، بزرگوں کے حوالے سے کہ جناب عمر کے لحاظ سے، پھر علم و عمل کے حساب سے، پر گھریلو بزرگوں کے حوالے سے، پھر بزرگان دین کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ٹاپک چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو روزانہ گویا کہ نمازوں کے اندر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ جہاں پر جو انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ سارے ہمارے بزرگ ہی تو ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر جو ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ تو یہی بزرگ ہیں ہمارے، انبیاء علیہم السلام۔ اس کے بعد صدیقین کا مقام ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے بڑے بزرگوں میں سے بزرگ ہیں صدیقین، پھر شہداء ہیں، اور پھر صالحین کرام ہیں۔ تو یہ ہمارے سارے بزرگ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں روزانہ التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی سیرتوں کو پڑھنا ہے اور ان کی زندگیوں کو مشعل راہ بناتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کا فیضان عطا فرمائے، انبیاء کا فیضان عطا فرمائے، یعنی جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، اللہ ان سب بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں، ہم اس سلسلے کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ماشاء اللہ سے اس بزرگوں کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی تھی، پہلے ہم نے پارٹ کے اندر بھی ڈسکشن کی ہے، تو اب مزید ہم سوالات بھی لیں گے اور آپ سے انشاءاللہ الکریم اس کے جوابات بھی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہمیں آپ آخر تک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جنریشن گیپ، آج کل کا نوجوان کہتا ہے کہ بزرگوں کی باتیں پرانی ہو چکی ہیں، اس سوچ کی اصلاح کیسے کی جائے؟
آپ کا نام کیا ہے؟
محمد ذاکر عطاری۔
ماشاءاللہ، ذاکر بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں بزرگوں سے دوری کے کیا نقصانات نظر آ رہے ہیں؟
جی مفتی صاحب، ایک ڈیجیٹل دور ہے اور جو ہے وہ ایک گیپ بھی آ گیا ہے جنریشن کے اندر۔ ویسے تو عمر کے حساب سے تو گیپ ہے ہی، ویسی بھی ایک گیپ ہے۔ بزرگوں کے خیالات، بزرگوں کی باتیں پرانی پرانی لگتی ہیں، جدید دور ہے۔ آپ بزرگوں سے محبت کی بات کر رہے ہیں، ان کے ادب کی بات کر رہے ہیں، ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیں، اس کا جواب تو جب ہی ملے گا جب بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے،
ٹھیک ہے،
بات چیت کریں گے۔
صحیح ہے،
جب بیٹھیں گے نہیں، بات چیت نہیں کریں گے، تو پھر یہی سوچ رہے ہیں۔ ایک گیپ کا بہت بڑا سبب جو ہے نا، جب سے یہ موبائل سوشل میڈیا آیا ہے،
جی،
ہر کوئی مصروف، یعنی گھر کے جو افراد ہیں وہ آپس میں گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ اگر ساتھ کوئی بیٹھا بھی ہوتا ہے، والدین سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جیب سے موبائل نکال کے اس میں لگے ہوتے ہیں، وہ چل رہے ہوتا ہے، ان کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، ہمارا موبائل چل رہا ہوتا ہے، तो ये बहुत बड़ा सबब है और ये एक तरह की बेअदबी है कि आप किसी बड़े के सामने बैठे हुए वो आपसे बात कर रहा है और आप मोबाइल के साथ लगे हैं, तो एक अजीब सी कैफियत होती है कि मैं यार इससे बात कर रहा हूँ, तवज्जो ही नहीं है, मोबाइल में लगा हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा बातें पुरानी देखें, असल में इनकी बातें पुरानी नहीं होती बल्कि अजमूदा होती हैं, तो लिहाजा हमें इनके तजर्बात से सीखना चाहिए। इनके बाद वक्त ऐसे तजर्बात होते हैं वो हमें कहीं किताबों में नहीं मिलते। ज़ाहिर दुनिया में बहुत सारे उन्होंने मराहिल देखे हुए होते हैं,
सही है,
उनके साथ अपनी परेशानी शेयर करनी चाहिए।
ठीक है,
उमूमी तौर पर ऐसा होता है वो कोई ना कोई हल बता देते हैं, बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसे नहीं, अपने तजर्बात की बुनियाद पर। वाकई वो हल इस तरह के होते हैं कि वो परेशानी दूर हो जाती है।
सही है,
तो आप उनके साथ शेयर तो करें, उनके साथ बैठें तो सही।
सही,
आप यही सोचते रहेंगे कि बातें पुरानी हैं, ये है वो है, आप बैठ के देखें आपको पता चल जाएगा, आप अपने तजर्बात शेयर करके देखें उनके साथ। तो लिहाजा ये सोच बाजू का ये समझ रहे होते हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, बोले यार ये तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, और देखा जाए ना तो ये आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं
जी जी,
इनसे कई दर्जा बेहतर वो बेचारे अंगूठा छाप जो अनपढ़ जिन्हें कहा जाता है।
अल्लाह,
कि उनको बड़ों की इज्जत करना आता है, वालदेन का अदब और एहतराम आता है, औलाद से शफकत करना आता है,
सही,
मियां बीवी के हुकूक के मामलात आते हैं, ठीक है ना। एक अनपढ़ जाहिल औरत
जी
वो जिस तरह अपने शोहर का अदब एहतराम कर रही होती है, वो पढ़ी लिखी औरत वैसा नहीं कर रही होती। मैं पढ़ाई को बुरा नहीं कह रहा
जी,
वो तो अच्छी चीज है, लेकिन
है।
हमें अपनी सोच को बदलना होगा,
ठीक है,
कि यार ये अनपढ़ है, अनपढ़ तो है लेकिन इनके अंदर अदब और एहतराम बहुत ज्यादा है। ये तजर्बा करके देख लें, मुशायदा करके बंदा देख ले कि पुरानी हमारे जो घर की खवातीन है, हमारी दादी नानियां हैं, वो इतनी पढ़ी हुई नहीं होती, लेकिन शोहरों का अदब, अदब और एहतराम,
सही,
और ये सारे मामले हम देखते हुए आ रहे होते हैं। आज के दौर में वो चीजें नजर नहीं आ रही होती, मियां बीवी का आपस में ऐसे, मतलब बीवी शोहर का अदब नहीं कर रही और शोहर बीवी के कमा को हुकूक पूरे नहीं कर रहा, लेकिन ये पुराने लोगों में हमने नहीं देखे। उमूमी तौर पे
ऐसा नहीं,
हम हर कोई अगर आप मुशायदा करे तो उसको यही लगेगा या माशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अदब एहतराम के साथ गुजार रहे हैं,
जी
ऐसी कोई परेशानियां नहीं। तो लिहाजा हमें जो है उनके साथ बैठकर अपने मामलात को शेयर करना चाहिए, उनसे गुफ्तगू करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है उनसे गुफ्तगू करना, उनके लिए राहत है, सुकून है,
ठीक है,
क्योंकि वो बुढ़ापा जो होता है ना उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ देह चीज एक होती है तन्हाई। वो अपने वो तन्हाई महसूस करते हैं, वो
है। जी जी।
इंतजार में होते हैं कोई इनके साथ बातें करे, मतलब वैसे ही शुरू करते हैं उनसे, बोलेंगे यार अपनी कोई पुरानी बात बताएं या उसके बारे में, वो बताने शुरू कर देते हैं, बड़ी खुशी से बताते हैं,
बिल्कुल,
हालांकि पहले भी बताई हुई होती है लेकिन
फिर
बता रहे होते हैं और बड़े मजे से बता रहे होते हैं और एक अच्छा लग रहा होता है अपने तजुर्बा। खासकर हमें अपने रिश्तेदारों के बारे में पता नहीं होता, फलाना कौन है फलाना, वो पूछ लें, वो बताते हैं हाँ भाई फलान जो है वो फलां का बेटा है फलां। उम्मीद तौर पर आजकल दौर में हम अपने रिश्तेदारों के बारे में इतनी मालूमात नहीं रखते। पहले ऐसा होता कि पूरे गांव के बारे में लोग मालूमात रखते थे, खानदान के बारे में रखते थे कि फलां कौन है फलां कौन है, एक दूसरे से मिलना जुलना सारे मामले रहते थे। तो ये जो गैप आ गया है इसको हमें दूर करना चाहिए, और इस्लाम भी यही चाहता है, ठीक है, कि हम अपने बड़ों के करीब रहें, इनकी सोबत इख्तियार करें,
ठीक है।
लेकिन इसमें एक बात मैं ये भी कर दूं कि जरूरी नहीं कि हर दफा सोबत अच्छी ही हो,
ठीक है।
बाल बुजुर्ग ऐसे हो जाते हैं बेचारे कि जो दीन के हवाले से कलाम करना शुरू हो जाते हैं, बड़े बुरे बाद बाद में ये कहने शुरू करते हैं कुरान में आया है जो हदीस में आया है, दीनी एतबार से उनसे मशवरा नहीं करना, मतलब अगर वो आलिम नहीं है और वो नहीं है तो दीनी मसाइल के हवाले से ज़ाहिर उलमा और मुफ्तियाने कराम से ही रुजू करना है, क्योंकि बाद चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े बूढ़ों में मशहूर होती हैं
लेकिन वो
दर हकीकत उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे शुरू से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई बड़े बूढ़े ये कहते थे भाई बेटियों का जो हिस्सा होता है वो रुपये में चारान है, रुपये में चारान है, ये बड़ा मशहूर है। हालांकि जब कुरान में तो ये है कि भाई आधा हिस्सा यानी आठने होगा, लेकिन जितना बेटे को मिलेगा उससे आधा बेटी को मिलेगा,
ठीक है।
कई लोग आते हैं तो हमसे यही पूछते हैं यार हमने तो ये सुना
चाराने का फुल
है। कि चाराने और बेटी को तो मैंने चाराने नहीं, कुरान में ये आया। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, गलत फहमियां होती हैं। तो दीनी एतबार से हम उलमा से रहनुमाई लेंगे, बाकी दुनियावी एतबार से उनके तजर्बात और इस एतबार से उनके साथ शेयर करना चाहिए, उनके साथ घुल मिल के बैठना चाहिए।
सही है, تو جنریشن گیپ جو ہے اس کو دور کرنے کا مفتی صاحب نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوں، اور ان کی باتیں پرانی ہیں یہ کہنے کی بجائے مفتی صاحب نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا کہ آزمودہ ہیں، ان کی باتیں پرانی نہیں آزمودہ ہیں، تو ان کے تجربات سے سیکھنا چاہیے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی دین ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور ہمیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت سے فیضیاب ہو کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید دیکھتے ہیں کیا سوالات ہیں ہمارے پاس۔
اگر بزرگ کوئی غلطی کر رہے ہوں تو ان کی اصلاح کیسے کی جائے گی؟
ہاں مفتی صاحب، یہ بڑا ایک معاملہ ہے، اور بزرگ غلطی پر ہوں تو ان کی اصلاح کرنے کی جو ہے وہ ترکیب کیسے کی جائے، یہ ایک اچھا بڑا معاملہ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو کی ہے اس میں بھی یہی چیز ہے کہ بھائی ان سے دینی معاملات نہیں پوچھنے ہیں،
جی جی
وہ جو ہے وہ علماء اہل سنت سے، مفتیان کرام سے پوچھنے ہیں۔ تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ بالکل غلطی پر ہیں، اصلاح کیسے کریں؟
دیکھیں ہے یہ حساس معاملہ، بعض اوقات غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بزرگوں کی اصلاح کا جو طریقہ ہونا چاہیے نا،
جی
وہ استاد والا نہیں ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے،
بلکہ خادم والا ہونا چاہیے۔
اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اب اس کی بہت اچھی مثال امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
جی
ان کے طریقہ کار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک بزرگ کو کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں،
صحیح،
ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
ان سے کہا، ارشاد فرمایا کہ ہم وضو کرتے ہیں،
صحیح،
آپ ہمیں دیکھیں ہمارا وضو کیسا ہے۔
اللہ اللہ سبحان اللہ۔
انہوں نے وضو کیا،
ٹھیک ہے،
وضو کرنے کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے وضو آپ کا ہی صحیح ہے، میں غلطی پر تھا۔
اللہ سبحان اللہ۔
اب دیکھیں کتنا پیارا انداز،
کیا بات،
ڈائریکٹ یہ نہیں کہا آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، بلکہ خود کر کے بتایا کہ آپ دیکھیں میں ہم کیسا وضو کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے۔
جب دیکھا تو بزرگ کو خود ہی احساس ہو گیا کہ یہ صحیح ہے اور میں غلطی پر ہوں۔ تو لہٰذا براہ راست یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ عرض یہ کریں کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، کیا اس طرح کرنا بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح کے جملے ہوں کہ یا اس پر رہنمائی لینی چاہیے۔
صحیح ہے
کہ یار شرعی رہنمائی لے لیتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، امام صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ڈائریکٹ بولیں گے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں تو وہ ایک سخت، ان کے لیے سخت جملہ ہوتا ہے۔
صحیح،
ان کو تھوڑا تفہیم کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ غلطی پر ہے، حکمت عملی سے کہہ دیں کہ دیکھیں ہو سکتا ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہم رہنمائی لے لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں پڑ جائیں، ایسے معاملات ہو جائیں،
ٹھیک ہے۔
اگر ظاہر گھر میں خود ہی عالم ہے کوئی وہ ہیں تو ظاہر بڑے جو ہوتے ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں ان کی باتوں پر، لیکن اگر عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، گھر کے فرد ہی عالم ہو تو وہ ان کی بات کو اتنی ترجیح نہیں دیتے۔
صحیح،
وہ جب کہتے ہیں نا امام صاحب سے میں نے پوچھا تھا، مفتی صاحب سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے، تو پھر وہ ان کو تسلی ہوتا ہے، اچھا اچھا اگر انہوں نے کہا ہے تو صحیح، لیکن گھر کا فرد کہے گا تو وہ کہتے ہیں کہ کل کا بچہ ہے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو لہذا حکمت عملی سے ہمیں جیسے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور خادم بن کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، استاد بن کے نہیں کرنی چاہیے۔
سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی مفتی صاحب نے، کتنا پیارا نسخہ مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کی اگر کوئی واقعی لگ رہا ہے کہ غلطی ہے تو اس اصلاح کیسے کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خادم بن کر عرض کرنا ہے، اور جو ہے نا اس انداز میں ہم کریں گے تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ بات بن جائے گی۔ مزید سوال لیتے ہیں۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، بزرگوں کی زندگی میں ان کی جائیداد کے حوالے سے اولاد کے لیے شرعی حدود کیا ہے؟
جی، جائیداد کے حوالے سے پورا ایک ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دوں کہ ہم پہلے ایک پروگرام پورا وصیت کے اوپر بھی کر چکے ہیں، اور وراثت کے حوالے سے بھی پروگرام آپ کو انشاءاللہ الکریم مل جائے گا، مفتی سجاد صاحب کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ ہوا تھا۔ تو فرمائیں مفتی صاحب جائیداد کے حوالے سے۔
دیکھیں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہو جاتے ہیں والدین، تو یا تو ان کے ذہن میں یہ خود بات آتی ہے،
جی،
کہ یار اب ہمیں جو ہے نا اپنی جائیداد اپنی زندگی میں،
ٹھیک ہے،
تقسیم کر دینی چاہیے تاکہ کل کو جھگڑے وغیرہ نہ ہوں۔
صحیح۔
یا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے कि औलाद में से कोई तकाजा कर रहा होता है
ठीक है
कि हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। और ज्यादातर हमारे माशरे में सूरत हाल ये पाई जाती है कोई ना कोई तकाजा कर रहा होता है जिंदगी में
ठीक है।
देखिए पहली चीज तो ये है कि जिंदगी में हर शख्स अपने माल का मालिक है
ठीक है।
जिंदगी में जायदाद तकसीम करने का शरीक कोई हुक्म नहीं है,
अल्लाह
शरीयत की तरफ से कोई हुक्म नहीं है।
सही है,
देकर तो फंस सकते हैं, ना देने में कोई गुनाह नहीं, रत्ती बराबर भी गुनाह नहीं, कोई हुक्म ही नहीं है। विरासत का ताल्लुक बाद मरने के है, जब किसी शख्स का इंतकाल होता है फिर विरासत के अहकाम होते हैं
ठीक है।
जिंदगी में विरासत तकसीम करने का कोई हुक्म नहीं।
सही है,
तो बेचारे ये समझ रहे होते हैं अगर हमने तकसीम नहीं की तो कहीं हम गुनहगार ना हो जाए।
सही है,
एक जहन में ये गलत फहमी है, तो ये गलत फहमी दूर करें बुजुर्ग हजरात कि इन पर लाजिम नहीं है। अगरचे औलाद तकाजा भी करे फिर भी वालदेन पर लाजिम नहीं कि अपनी जिंदगी में ही तकसीम
कर दें ठीक है।
और अगर औलाद का तकाजा करना वालदेन के लिए अजियत और तकलीफ का बाइस बने
जी
तो जाहिर औलाद गुनाहगार होगी
ठीक है।
और कई दफा ऐसा हुआ है कि बुजुर्ग आए दारुल इफ्ता में और रोए,
अल्लाह
औलाद ने इतना तंग किया होता है कि हमारा हिस्सा तो हम उनको कहते हैं कि भाई ऐसे को तो देना ही नहीं चाहिए,
मतलब जो ऐसा ना फरमान बनता
पता नहीं जब होता, लेकिन वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं वो इसी खौफ से अगर मैंने नहीं किया तो कल को दीगर औलाद को ये तंग करेगा। लेकिन ऐसा भी होता है जिंदगी में तकसीम भी कर देते हैं फिर भी झगड़े हो रहे होते हैं बाद में, ऐसे भी केसेस आ रहे हैं।
अल्लाह अल्लाह।
तो लिहाजा पहली बात तो ये हुई कि जिंदगी में तकसीम करना लाजिम नहीं, जिंदगी में हर शख्स अपने माल का मालिक है। अगर बखुशी अपनी जिंदगी में तकसीम करना चाहते हैं
ठीक है,
अगर आपके पास इतना है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बैंक बैलेंस है तो समझ में आती है। अब अमूमी तौर पे एक ही मकान होता है
ठीक
है, अब उसको बेच के उसमें अपना भी हिस्सा निकालना है, बीवी का भी निकालना है, औलाद को भी देना है, तो हर एक के हिस्से में इतना थोड़ी आएगा कि वो
अपनी रिहाइशें
ले सके, एक की वजह से सभी परेशानी में आ रहे होते हैं। और अगर तो है बाद क्या करते हैं कि पूछ के फिर लिख के चले जाते हैं, बेटों को बोले बेटी का इतना है, फलाने का इतना है, फलाने का इतना है, तो बेटी को इतने दे देना, इतने दे देना, इतने दे देना, तो ये भी गलत है।
सही,
अगर देना तो जिंदगी में दे के हिबा कर दें, कब्जा दिला दें
ठीक है।
तो इसका तरीका ये है कि अगर देना भी है तो अपने लिए, अगर बीवी हयात है तो उसके लिए भी जितना चाहे हिस्सा रखें, उसकी कोई कैद नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सारा ही इनका है, पूरा ही अपने पास रख सकता है।
सही
है ना, तो जितना चाहे रखें, फिर जो बाकी बचता है तो वो अपनी तमाम औलाद में बराबर बराबर तकसीम कर दें
ठीक है।
बेटे जितना बेटे को दे रहे हैं उतना बेटी को दें
ठीक है,
क्योंकि बेटे को दो हिस्से, बेटी का एक हिस्सा ये बाद मरने के, वो विरासत का है
ठीक है,
जिंदगी में बराबर बराबर, और ये अफजल है
ठीक है।
लेकिन अगर कोई दूसरे ऑप्शन पे भी अमल करता है कि बेटे को डबल और बेटी को सिंगल दे रहा है
ठीक है,
तो इसकी भी उलमा ने इजाजत दी है, लेकिन बेहतर यही है कि बराबर बराबर किया जाए
ठीक है।
अलबत्ता कोई औलाद में से कोई है कि वालदेन की ज़्यादा खिदमत गुजार है या तालिबे इल्मे दीन है, इस वजह से अगर उसे कुछ ज़्यादा दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं,
हर्ज नहीं।
वरना सब में बराबरी रखना चाहिए। अगर आपके पास इतना नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप किसी को कुछ ना दें, बाद की बात देखी जाएगी।
सही,
क्योंकि जिंदगी में देना लाजिम नहीं है, अगर देना है तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाए
ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें ये भी है कि वालिदैन के पास अच्छा खासा जो है वो बैंक बैलेंस होता है, और जैसे अगर उसके उनके चार औलादे हैं, एक बेटी है, तीन बेटे हैं, या दो बेटियां, दो बेटे हैं, और उनके पास वसत होती है, अपने अच्छे खासे फ्लैट होते हैं, अपना बिजनेस होता है, कारोबार होता है, तो अगर वो सबको देना चाहें तो दे भी सकते हैं, और अपने लिए भी अच्छी खासी रकम उनके पास होती है जो रख सकते हैं, तो फिर उनको क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए? अगरचे माल तो उन्हीं का है, लेकिन इसमें क्या होता है, बार दफ़ा ऐसा भी होता है कि वालदेन के मरने का जो है ना, बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये दुनिया से जाएंगे तो विरासत बटेगी, तो कुछ मुझे भी सहूलत मिलेगी। बाज होता है कि उनके अपना ठीक से गुजर बसर नहीं हो रहा होता, तो बाप के पास अच्छा खासा माल है और ये उस तरह से क्वालिफिकेशन नहीं हासिल कर सका, उस तरीके से पढ़ नहीं पाया, उस तरीके से इसका बिजनेस उस तरह का नहीं है, अब ये गुर्बत तो अफलास में गोया कि ज़िंदगी गुजार रहा है, और जो है ना वो दूसरे बच्चे उस कुछ बेहतर हैं, तो या फिर ये कि पूरी की पूरी औलाद ही उस तरीके से नहीं जो है ना वो अच्छे तरीके से चल पा रहा निज़ाम उनका, तो वो फिर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब्बा मरेंगे तो विरासत तकसीम होगी तो कुछ हमारे लिए भी सहूलत हो जाएगी।
उनको फिर ये भी सोचना चाहिए कि अब्बा से पहले हम मर गए तो क्या होगा, ठीक है।
अल्लाह अल्लाह
और ये ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि वालदेन की ज़िंदगी में किसी बेटा बेटी का इंतकाल हो जाए तो उसका हिस्सा ख़त्म हो जाता है, उसकी औलाद को भी हिस्सा नहीं मिलता।
अल्लाह अकबर, क्या
साथ
बात
ये
है,
भी सोचें कि अगर हम
अल्लाह
पहले मर गए तो हमारी औलादों को भी हिस्सा नहीं मिलेगा,
सही है।
तो ये सोच तो रखनी नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता ऐसा है कि वाकई अगर इतना कुछ है तो फिर वालदेन को सोचना चाहिए कि औलाद में वाकई ऐसे हैं परेशानी,
जी
अगरचे
जी
उन पर लाजिम नहीं है,
ठीक है ठीक है,
क्योंकि आप बालिग हो चुके हैं, औलाद तो औलाद
सही
का नफका बाप
सही,
वालिद पर लाजिम नहीं होता,
हाँ
लेकिन अगर उनकी मदद कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं ताकि वो परेशानी से निकल जाए, तो ये अच्छी बात है। और अच्छी नीयत के साथ, सिला रहमी के साथ करेंगे तो सवाब के भी हकदार होंगे,
सही है
ठीक है ना। एक दूसरा पहलू है,
जी
वालिद की मिल्कियत की चीजें, वालिद का इंतकाल हो जाता है,
जी
वालदा हयात होती हैं, तो फिर ये एक सोच है हमारे माशरे में कि जब तक वालदा जिंदा हैं
हाँ जी हाँ
विरासत तकसीम नहीं होगी, ये गलत
जी
है,
जी ये भी है
ये गलत है। क्योंकि वालिद का जब इंतकाल हो गया तो अब विरासत मतलब इसमें हर एक के हिस्से में शामिल हो गई,
बिल्कुल
इसमें वालदा का भी हिस्सा बहैसियत बेवा होने के है।
ठीक है
वालदा भी ये नहीं कह सकती कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ विरासत तकसीम नहीं होगी ना
सही
औलाद, विरासत
सही
जल्द से जल्द तकसीम कर देनी चाहिए।
ठीक है
लेकिन जब वालिद साहब जिंदा है तो इस सूरत में वालिद की रिजा पर राजी रहना चाहिए, अगर
सही
वो बखुशी देना चाहते हैं, अगर तकाजा कर रहे हैं लेकिन तकाजा अदब एहतराम के साथ कर रहे हैं, कोई इनके लिए तकलीफ का बायस ना हो तो दुरुस्त है, अगर वो अपनी खुशी से करना चाहें तो कर सकते हैं।
सही है
लेकिन ये जहन में रखें, होता क्या है कि जाहिर है अपने लिए भी कुछ छोड़ेंगे ना,
हाँ जी हाँ जी
तो वो तकसीम कर दी, फिर जब इनका इंतकाल होता है तो वो भी तकसीम होना होता है, वो फिर दोबारा बहन भाइयों में वो सारे
नहीं,
मामला।
पिछले दिनों मदनी मुजाकरे में मैंने इस तरह का क्लिप सुना था, मेरे लिए सुना का कि वालदेन तकसीम करना चाहें तो करें, लेकिन ऐसा ना कि सबका सब इतने फयाज बन गए, इतने सखी बन गए कि औलाद को सब कुछ ही दे दिया, अब औलाद के रहमो करम पर आ गए, तो बोले कि ऐसा नहीं कीजिएगा, मेरा आपको मशवरा यही है कि अपने लिए लाजमी रखें।
होता यही है, जब तक वालदेन के पास है ना चीजें
जी जी
तो पूछेंगे भी, भूल भी
अल्लाह
पूछेंगी,
अल्लाह
खिदमत भी होगी, सब कुछ होगी, और जब तकसीम कर देंगे ना फिर मामला बिगड़ना शुरू हो जाते
बिगड़ना
हैं,
शुरू हो जाता है। हाँ
तो
जी
वालदेन बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे भी वालदेन आए हमारे पास, वाकई उन्होंने कहा कि हमने चलो इसलिए तकसीम कर दिया था, चलो औलाद हमें
जी जी
संभालेगी
सही है
और अब हमारा बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा,
ठीक है
लेकिन ये तो उन्होंने हमें तंग करके रख दिया।
अल्लाह
तो उम्मीद तौर पर ऐसा होता है, कोई एक ना हो तो भी लालच होती है ना, तो इसलिए खिदमत भी हो रही होती है, सब कुछ हर एक की अपनी नियत, इन्नमा अलामालु
हाँ सही
बिन्नियात
जी
है,
जी जी जी
तो लिहाजा वो बात अच्छी है अमीर अहले सुन्नत की कि सब कुछ ना दे दें, अपने लिए इतना छोड़ें कि जितनी जिंदगी बाकी है
सही
तो किसी के मोहताज ना रहें, उसी में
मोहताज
से ही खर्च करते रहें।
ठीक है
सबसे पहले तो उन पर कोई अगर फरीजा है, मिसाल के तौर पर वालदेन ने हज नहीं किया, हज उन पर फर्ज है,
सही है
तो वो पहली फुर्सत में कर लेना चाहिए,
ठीक है
क्योंकि ये तो फर्ज है,
सही है
इसकी अदायगी तो करनी है। अगर तमाम फराइज वगैरह अदा कर चुके हैं और अपनी खुशी से करना चाहते हैं और इतना है कि अपने लिए भी इतना छोड़ देंगे बाकी औलाद में तकसीम कर दें, तो बाकायदा तौर पे तकसीम करके देते हैं, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये शरी तौर पे लाजिम नहीं, और औलाद पर कोई यह हक हासिल नहीं कि वो जिंदगी में तकाजा करे।
सुभान
अगर
अल्लाह
उनका तकाजा करना वालदेन के लिए तकलीफ का बायस होगा तो औलाद गुनाहगार होगी, वालदेन गुनाहगार नहीं।
वाह माशाल्लाह, बड़ा क्लैरिटी के साथ मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया कि ये इस तरह के जो तकाजे हैं वो तकाजे करना ही दुरुस्त नहीं है, और बहरहाल अपने माल के मालिक हैं वालदेन, उनसे अगर इज्जत और एहतराम के साथ लिमिटेशन के साथ अदब को मलहूज़े खातिर रखते हुए, शरी तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए अगर तकाज़ा करता है, तो तकाज़ा करने को ये नहीं कहा जा रहा कि वो गलत है, तकाज़ा कर सकते हैं, लेकिन वालदेन का उस तकाज़े पर अमल करना ये ज़रूरी नहीं है। वो पूरा मुफ्ती साहब ने तफसील के साथ बता दिया। अल्लाह तबारक ताला इन चीज़ों को भी हमें पेश नज़र रखने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
मेरा सवाल ये है कि जिनके बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो अब उनकी बरकतें और उनकी दुआएं कैसे हासिल कर सकते हैं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए।
जी बुजुर्ग चले गए दुनिया से, अब क्या किया जाए?
देखें, उनके लिए रहमत के दरवाजे बंद नहीं हुए, ठीक है ना। बुजुर्ग दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए सदका व खैरात, कुरान खानी करें, इसाले सवाब करें
जी,
और हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करें।
सही।
इसी तरह उनके रिश्तेदारों के साथ, खासकर उनके दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करें। ये भी वालिदैन के हुकूक में से,
ठीक है,
कि अगर वो इंतकाल कर जाएं तो उनके जो दोस्त यार हैं
जी,
उनका इकराम करें, इज्जत करें।
सही।
तो इससे उनकी रूह को तस्कीन होती है, खुशी मिलती है।
सही।
तो जब ये करेंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो कब्र में हमारे लिए दुआ करते रहेंगे।
सही।
ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद दुआ का सिलसिला खत्म हो जाता है।
अल्लाह, ठीक है,
दुआ का सिलसिला रहता है।
सही।
और वो दुआ करते भी हैं,
ठीक
है ना। तो उनके लिए हम जितना इसाले सवाब करेंगे, सदका व खैरात करेंगे, सदका जारिया करेंगे, और उनके रिश्तेदारों के साथ आपस में भी जो है सिला रहमी करेंगे, क्योंकि आपस में मामलात खराब हों तो वो भी उनके लिए तकलीफ का बाइस होता है। यानी औलाद जैसे विरासत के मामले में आपस में लड़ रही होती है, या वैसी जो है नाचाकियां होती हैं, तो उससे उनको अजियत होती है। आपस में सिला रहमी हो, खासकर उनके रिश्तेदारों दोस्तों के साथ सिला रहमी करें
जी, जी।
तो इस तरह उनको तस्कीन होगी, उनकी रूह को राहत होगी, और इंशाल्लाह वो कब्र में दुआ भी करेंगे।
अल्लाह अकबर। तो बुजुर्ग दुनिया से चले जाएं, उनके लिए एहसाले सवाब का अहतमाम, और उनके जो करीब के लोग हैं उनके साथ हुस्ने अखलाक से पेश आना, ये तस्कीन और राहत का सबब बनेगा। बड़ा ही प्यारा इसके ऊपर एक रिसाला है अमीर अहले सुन्नत का, फातिहा का तरीक़ा। उसमें जो है ना वो एहसाले सवाब करने का पूरा तरीक़ा ये बयान किया गया है। एहसाले सवाब के मुतअल्लिक़ कुरान और अहादीस से फ़ज़ाइल भी बयान किए गए हैं। तो फातिहा का तरीक़ा, इसे आप हासिल कर लें इंशाल्लाह। इसको पढ़ कर जो है ना मज़ीद एहसाले सवाब कैसे करना है, इसकी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
इल्म दी सीखना है हम हद से लहद तक, देखो गफलत से बचना जिंदगी की सरहद तक।